यजिकेल पुराने नियम की कहानी के सबसे अंधकारमय समय में से एक में रहता था। परमेश्वर के नगर यरूशलेम को घेर लिया गया, कई लोगों को निर्वासन में ले जाया गया था और जो बच गए थे वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पीढ़ियों से उनके अगुओं ने विफलता का सामना किया, जो लोगों के बजाय अपने बारे में अधिक सोचते थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें जवाबदेह ठहराया। परमेश्वर स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाहा होंगे। 17:26 चरवाहा। अपनी बाइबल में यजिकेल 34 खोले। प्रत्येक परिवार, स्कूल, व्यवसाय, गिरजाघर और राष्ट्र का अनुभव काफी हद तक उसके नेतृत्व की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। यदि आपने खराब नेतृत्व का प्रभाव सहा है तो यह पाठ आपके लिए है। यह पाठ वर्णन करता है कि किस प्रकार परमेश्वर के लोग अपमानजनक नेतृत्व के अधीन पड़े रहे और कैसे परमेश्वर ने स्वयं हस्तक्षेप किया। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको नेतृत्व का विशेष अधिकार सौंपा गया है तो यह पाठ दिखाएगा कि परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए और आप अपनी बुलाहट को कैसे पूरा कर सकते हैं। पुराने नियम में 3 अलग अलग नेतृत्व की भूमिकाएं हैं: भविष्यवक्ता, पुरोहित और राजा। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर का वचन सुना ताकि वे लोगों को वह वचन सुना सके। भविष्यवक्ताओं ने सत्य के क्षेत्र में नेतृत्व दिया। पुरोहितों की सेवकाई प्रार्थना आराधना संबंधित थी। उन्होंने मंदिर में प्रार्थनाएं और बलिदान चढ़ाए और वे पादरी द्वारा देखभाल और परामर्श की सेविकाएं के माध्यम से लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाते थे। राजाओं ने युद्ध में लोगों का नेतृत्व किया और दुश्मनों से उनकी रक्षा की। वे लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए भी जिम्मेदार थे ताकि वे परमेश्वर की आशीष का आनंद लेते रहे। ये 3 सेवकाई एक साथ मिलकर हमें परमेश्वर की नेतृत्व के लिए योजना दिखाती है। भविष्यवक्ता को लोगों को सत्य की ओर ले जाना था, पुरोहित को लोगों को परमेश्वर के पास लाना था और राजा को लोगों को धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन कराना था। भविष्यवक्ता की सेवकाई खुलासा करने के बारे में थी, पुरोहित की सेवकाई मेल मिलाप के बारे में थी और राजा की सेवकाई शासन करने के बारे में थी। एक चरवाहे की छवि भविष्यवक्ता, पुरोहित और राजा की भूमिकाओं को एक सुंदर चित्र में एक साथ लाती है, जो बाइबल नेतृत्व के सभी 3 पैमानों को समाहित करती है। चरवाहा भेड़ों को खाना खिलाता है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन के स्वस्थ आहार पर बनाए रखता है। चरवाहा भेड़ को ढूंढता है, खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है और उन्हें वापस लाता है। चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करता है, भेड़ बकरियों को दिशा और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जब परमेश्वर चरवाहों के बारे में बात करते हैं तो वह उन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके लोगों का नेतृत्व करने में शामिल है। अधिकांश व्यवसायों में कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया है इसकी वार्षिक समीक्षा या मूल्यांकन करने की प्रणाली होती है। परमेश्वर ने इज़राइल के चरवाहों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और यजिकेल 34 में वे उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन देते हैं। यह अच्छी समीक्षा नहीं थी। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? परमेश्वर ने अपने लोगों के अगुओं के विरुद्ध 3 आरोप लगाए। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उन्होंने सच्चाई को तोड़ मोड़ करके पेश किया और उन्होंने परमेश्वर की उपेक्षा की। परमेश्वर के लोगों को लगातार दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कई राजा दुष्ट थे और यहां तक कि सबसे अच्छा राजा भी लोगों पर भारी बोझ डालते थे। परमेश्वर ने उन्हें अपने भेड़ बकरियों की देखभाल करने में पुनर्विफलता के लिए दोषी ठहराया। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। परमेश्वर ने उन लोगों को भी दोषी ठहराया जो भविष्यद्वक्ता होने का दावा करते थे, परंतु परमेश्वर के वचन को अपनी राय से बदल देते थे। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहुवा का वचन सुनो, प्रभु यहुवा यों कहता है, हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपने ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। इन अगुओं ने यह जानने के लिए संस्कृति का अध्ययन किया कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। फिर उन्होंने समय की जरूरतों के अनुरूप अपने संदेश को आकार दिया। यजकेल के समय में इन भविष्यवक्ताओं ने शांति कहकर परमेश्वर के लोगों को गुमराह किया, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि कोई शांति नहीं होगी। परमेश्वर ने जो कहा उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। उनकी सेवकाई सत्य से नहीं बल्कि मांग से प्रेरित थी। पुरोहितों को लोगों को परमेश्वर के पास लाने की सेवकाई दी गई थी, परंतु उन्होंने लोगों को परमेश्वर के साथ शांति पाने में मदद करने के बजाय खुद के साथ शांति में रहने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे प्रार्थना की सेवकाई नहीं कर रहे थे या लोगों को ये नहीं दिखा रहे थे कि परमेश्वर के साथ कैसे मेल मिलाप किया जाए। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहराता हूं। जब परमेश्वर ने इज़राइल के चरवाहों की ओर देखा तो उन्होंने शक्ति का भयानक दुरुपयोग देखा, सत्य को जानबूझकर उलट फिर करता हुआ देखा और स्वयं परमेश्वर की उपेक्षा देखी। इस सब का प्रभाव यह हुआ कि परमेश्वर की भेड़ बकरियां कुपोषित हो गई, भेड़ बकरियों की देखभाल नहीं की गई और उनकी सुरक्षा नहीं की गई। परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच की स्थिति को असहनीय पाया, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा, परमेश्वर यहुवा की यही वाणी है। परमेश्वर यह कह रहे थे, मैं अपने लोगों के लिए भविष्यवक्ता, पुरोहित और राजा बनूंगा। मैं स्वयं उनके सामने सच्चाई लाऊंगा। मैं अपने लोगों के पास आऊंगा और उनकी देखभाल स्वयं करूंगा। मैं खुद उनकी रक्षा करूंगा और उन्हें सही रास्ते पे ले जाऊंगा। परमेश्वर ऐसा कैसे करेंगे। कहानी को अगले 600 वर्षों तक आगे बढ़ाए और यीशु मसीह का जन्म दुनिया में होता है। उन्होंने देखा कि परमेश्वर के लोग उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और उन्हें उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। उन्होंने भेड़ों का शोषण किया, परंतु यीशु ने भेड़ों के लिए अपनी जीवन दे दिया। उन्होंने भेड़ों का वध किया, परंतु यीशु इसलिए आए ताकि भेड़ों को जीवन मिल सके। यीशु एक अच्छे चरवाहा है जो भेड़ों को चराते हैं, भेड़ों की खोज करते हैं और भेड़ों की अगुवाई करते हैं। वे आपको सच्चाई से पोषित करेंगे। जब आप भटक जाएंगे तब वे आपको वापस लाएंगे और आपको पुनर्स्थापित करेंगे। वे आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, और जब मृत्यु आएगी तो वे आपको अनंत जीवन में ले आएंगे। मेरी भेड़े वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यीशु के मन में उन लोगों के प्रति विशेष करुणा है जिन्होंने दुर्व्यवहार करने वाले अगुओं के अधीन कष्ट सहा हो, क्योंकि वे स्वयं जानते हैं कि दुर्व्यवहार करने वाले चरवाहों के अधीन कष्ट सहना क्या होता है। जब बड़ी भीड़ यीशु की ओर आकर्षित हुई तो उस समय के धार्मिक अगुओं ने अपनी भेड़ बकरियों को खोने का खतरा देखा, इसलिए उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और अच्छे चरवाहे पर इज़राइल के चरवाहों द्वारा मुकदमा चलाया गया। जब कायफा के सामने यीशु को ले जाया गया तो उन पर थूका गया, थप्पड़ मारा गया और उन्हें पीटा गया। जब यीशु को हिरोदस के पास भेजा गया तो राजा ने उनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। जब यीशु को पिलातुस के सामने लाया गया तो राजपाल ने सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यीशु के बारे में उनका निर्णय न्याय पर नहीं बल्कि लोगों की मौजूदा मनोदशा पर आधारित था। पिलातुस ने अपने हाथ धोए और यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया। आपके उद्धारकर्ता जानते हैं कि उन चरवाहों के अधीन कष्ट सहना कैसा होता है जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सत्य को बदल देते हैं और परमेश्वर से अधिक स्वयं की परवाह करते हैं। यदि आप अपमानजनक अगुओं से पीड़ित हुए हैं तो आपके पास एक उद्धारकर्ता है जिसके पास आप आ सकते हैं। यीशु अच्छे चरवाहा कहते हैं, मैं खोए हुए को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। खोई हुई का मतलब है कि आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं और आप वहां से वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। यदि आप आज खोया हुआ महसूस करते हैं तो यीशु आपको ढूंढने और बचाने आए हैं, और यदि आप अपने आप को उन्हें सौंप देंगे तो वे आपको घर ले आएंगे। निकाली हुई का मतलब है कि आप अन्य भेड़ों से दूर हो गए हैं, आप अलग थलग हैं, और क्योंकि आप अकेले हैं आप असुरक्षित हैं, परंतु यीशु आपको वापस ला सकते हैं। घायल होने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको वास्तव में पीड़ा हुई हो। शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा घायल हुए हैं जिसने सत्ता का दुरुपयोग किया हो या सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। यीशु आज आपसे कहते हैं, मैं तुम्हारे घाव बांधूंगा। अब आप कह सकते हैं, मेरे घाव बहुत गहरे हैं, परंतु ऐसा कोई घाव नहीं है जिसे मसीह ठीक नहीं कर सकते। बीमार का मतलब है कि आपके पास वह करने की शक्ति नहीं है जिसे आपको करने की जरूरत है। यदि आप नहीं जानते कि आप इस बीमारी का कैसे सामना करेंगे, तो यीशु आपको शक्ति देने का प्रस्ताव देते हैं। यह कितनी अद्भुत बात है कि आपके पुनर्स्वामित्व और देखभाल परमेश्वर के पुत्र के पास है। जब आप कह सकेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप यह भी कह सकेंगे, मुझे कुछ घटी ना होगी। परंतु फिर परमेश्वर कहते हैं, जो मोटी और बलवंत है मैं उन्हें नष्ट करूंगा। मोटी और बलवंत वे हैं जो यह समझते हैं कि उन्हें चरवाहा की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन सभी को न्याय दिलाएंगे जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और उन सभी को जो उसके नियम का विरोध करते हैं। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। परमेश्वर की भेड़ों की चरवाही में भविष्यवक्ता, पुरोहित और राजा की अगुवाई शामिल होती है। गिरजाघर में जिन लोगों पर परमेश्वर ने अगुवाई की जिम्मेदारी के लिए विश्वास दिखाया है, उन्हें अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी राय सिखाना परमेश्वर के लोगों की आध्यात्मिक जरूरतों की उपेक्षा करना या उन पर अनावश्यक बोझ डालना विशेष अधिकार का दुरुपयोग है। एक प्रभावी अगुवा परमेश्वर की सच्चाई सिखाएगा, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेगा और परमेश्वर की भेड़ों को उन रास्तों पर ले जाएगा जो परमेश्वर के लिए प्रिय हो। वे इन कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि वे महान चरवाहे यीशु मसीह के प्रति जवाबदेह हैं, जिन्होंने भेड़ के लिए अपना जीवन दे दिया।